रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अध्यात्म रामायण का उपसंहार हो रहा है, भगवान की लीलाओं का भी उपसंहार हो रहा है। देखो, अब जो लीला यहां बताई जा रही है, भगवान शंकर ने अध्यात्म रामायण में तो पार्वती जी को सुनाया है, पर तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पार्वती जी ने पूछा तब भी लीला नहीं सुनाई कि भगवान किस प्रकार अपने धाम में गए थे। ये पार्वती का प्रश्न रामचरितमानस में ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। तुलसीदास जी महाराज ने क्यों नहीं सुनवाया भगवान शंकर के मुख से, वो तुलसीदास जी महाराज जाने। तुलसीदास जी महाराज ने जो जो लीलाएं वहां लिखी है, ऐसा लगता है तुलसीदास जी महाराज भगवान की आज्ञा से ही लीलाओं को लिखते हैं और आज्ञा से ही लीलाओं का निषेध भी करते हैं। ये मत देओ तो मत दिया। तुलसीदास जी का हृदय था वो भक्ति के अंदर सराबोर था, वो कभी भगवान को अपने से अलग नहीं मानते थे। इसलिए भगवान के परमधाम गमन की लीला तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। तुलसीदास जी ने उत्तर कांड को लिखा तो काकभूषुंड का चरित्र सुनाया, काकभूषुंड जी के पिछले जन्म कैसे थे, क्या क्या किया, कैसे गुरु का अपमान हुआ, कैसे भगवान के सगुण रूप का भी अपमान हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें तो बोले, परंतु तुलसीदास जी महाराज ने साकेत धाम की बात नहीं बताई। कृपा की उन्होंने, पढ़ने वाला ये समझता गया लो भगवान तो चले गए। तुलसीदास जी ने देखा कि भगवान तो हमारे रामचरित मानस में विद्यमान है, मैं साकेत में क्यों भेजूं? अतः उन्होंने वैसा विचार किया और लीला का रहस्य भगवान शंकर पार्वती जी को व्यास जी की वाणी के अंदर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से सीता जी भगवान में लीन हो गई और सब जो जो भगवान के साथ आए थे उनके बहुत विचित्र ढंग से वे भगवान के धाम में गए हैं। अब जो भगवान ने सीता जी को अभी सुबह कहा था कि देखो, मैंने लोकापवाद से तुम्हारा त्याग करना उचित समझा है, फिर अपने वापिस एक बार लोगों के सामने आएंगे और उस समय में तुम अपना प्रत्यय माने विश्वास दिला देना और फिर तुम भूविवर में प्रवेश कर जाना, फिर मैं भी आ जाऊंगा। उसी बात को बड़ी भूमिका के साथ व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और भगवान शंकर सुना रहे हैं। कहने लगे, देखो शत्रुघ्न जी थे, ये गए मथुरा, तो जिस समय में वो शत्रुघ्न जी मथुरा के लिए रवाना हुए थे तो रात्रि का विश्राम वाल्मीकि जी के आश्रम में किया था, और उसी रात भगवान के दोनों पुत्र हुए, लव और कुश सीता जी के हुए थे। तो शत्रुघ्न जी तो वहां से मथुरा के लिए रवाना हो गए, और इधर सीता जी ने लव और कुश को खूब अच्छा ऋषि मुनि की आज्ञा से, वाल्मीकि जी की आज्ञा से खूब अच्छा उनको पढ़ाया लिखाया, धनुष शास्त्र भी बताया, और इधर गुरु जी ने उनको रामायण की कथा सुनाई। लव और कुश दोनों ही ऋषि मुनियों का वेश बनाए हुए रामायण की कथा लोगों को सुनाते थे। ये वो रामायण की कथा है जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। दोनों छोटी अवस्था में थे, आते हुए इनका स्वर बड़ा मीठा लगता था, और सुंदरौ अश्विनौ इव, और अश्विनी कुमारों के समान ये दोनों एक जैसे लगते थे। जिस समय रामायण को गाते थे उस समय ताल स्वर ऐसा मिला रहता था, ऋषि मुनियों का समाज सब वहां पर इस बात को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता था। वे ऋषि मुनि आपस में बात करते कि बच्चे कौन है, ये गंधर्वों जैसे दिखते हैं, गंधर्वों में होंगे क्या, किन्नरों में से हैं क्या, देवा और जो है कोई देवताओं के यहां से आए हैं क्या, हमने तो सब दिशाओं में घूम घूम करके देखा है, ऐसा सुंदर दोनों बच्चों का रूप कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। नाग्याई ईद्रिक, ऐसा हमने दृष्टि को लुभाने वाला रूप न अदर्शी न अश्रावी, न तो देखा न सुना और नहीं कभी ध्यान में आया। ऐसे वे लोग सुख पूर्वक ऐसे रहते थे। इधर राम जी महाराज ने कई प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा के द्वारा प्रसिद्ध हुए अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञान स्वर्णमयीम सीताम विधाय विपुल द्युति। अब इधर क्या हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करें तो वहां जो है सीता जी की आवश्यकता हुई तो एक सोने की सीता बनाई, सोने की सीता बना करके और उन्होंने यज्ञ किया। वाल्मीकि जी महाराज भी उस यज्ञ के अंदर ऋषि मुनियों के झुंड के अंदर आए हुए थे। एक बार ये बच्चे वाल्मीकि जी के पास बैठे हुए हैं, बहुत से ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं, राम जी की कथा गा रहे थे, गाते 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 अकस्मात कुश ने पूछ लिया, देखो लव और कुश है ये तो अपने लोग बोलते हैं, लेकिन इनमें कुश बड़ा लव छोटा था, तो कुश लव है, यहां पर कुश का नाम पहले आता है कुश लव। अस्तु, तो कुश ने वाल्मीकि जी महाराज से पूछ लिया, कथा करते करते बीच में ही सत्संग की बात पूछी, क्यों, इसलिए पूछा कि ये बताने के लिए अपने लोगों को कि भगवान की कथा आप लोग कहते सुनते रहो, आपके अंदर तात्विक बात पूछने की कहने की अपने आप ही आ जाएगी। तो उस छोटे से बालक ने ऋषि मुनियों के बीच में वाल्मीकि जी से पूछा कि हे भगवान, मैं संक्षेप में ये सुनना चाहता हूं कि जीवात्मा शरीर से तत्वतः बिल्कुल अलग बताया जाता है, तिल और चावल की तरह से दोनों अलग अलग हैं, फिर महाराज इनका बंधन कैसे हो जाता है, और फिर इसका बार बार संसार में आना जाना क्यों होता है, बंधन यदि झूठा है तो फिर बार बार जन्म मरण क्यों होता है, और बंधन यदि हो भी गया तो इस बंधन से फिर मुक्ति कैसे होगी महाराज, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो वाल्मीकि जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के और कहने लगे, देखो मैं तुमको संक्षेप में सुनाता हूं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, बंधन का स्वरूप भी सुनाना चाहता हूं और बंधन से मुक्त कैसे हूं उसका साधन भी मैं तुमको सुना देता हूं। देखो सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा ही तुम आचरण में लाओगे तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। सत्संग की बातें हैं ये, सुननी चाहिए पर सुनने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, जीवन में आनी चाहिए। जीवन में जब आती है तब असली सुनना होता है, नहीं तो जैसे सुने वैसे ही न सुनने में कर शामिल कर दोगे। तथैव आचरम भद्र है, तथैव आचर भद्रंते। बताते हैं कि शरीर है ना, ये इस आत्मा का घर है। देह एव महागेहम अधेहस्य चिदात्मन है, यह एक राजधानी है, राजा की राजधानी। आत्मा तो राजा है, शरीर इसका किला है। अब किले के अंदर राजाओं के पास मंत्री लोग भी होते थे, तो ये अहंकार है, ये मंत्री है। मंत्री सारा काम देखता है। अब ये अहंकार है, यही कहता है मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं दुर्बल हो गया हूं, मैं सबल हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मैं गरीब हो गया हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, या मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, केवल ये मैं ही मैं बोलता है, ये मंत्री करता रहे। और ये भी केवल झूठा कल्पित मंत्री है। देह गेहा विमानन स्वम समारोप्य चिदात्मनि। तो इस आत्मा ने क्या किया कि शरीर रूपी घर के साथ तादात्म्य कर लिया, उसके साथ एकदम घुल मिल गया। घुल मिल जाने से ये अहंकार पैदा हो गया, और वो पैदा हो करके और अहंकार को इतना महत्व दे दिया कि वो अपने को भूल गया। अब उस अहंकार के अंदर जो संकल्प विकल्प आते रहते हैं, उन संकल्प विकल्पों को वो सच्चा मानने लग गया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है। ऐसे संकल्प यति चानिशम। अब इस संकल्प का त्याग कौन करेगा? जो ये संकल्प को बनाने वाला वही इसका त्याग करेगा। ये संकल्प जब तक नहीं छूटता है तब तक संकल्प के तीन रूप होते हैं, एक तो उत्तम संकल्प, एक मध्यम संकल्प, एक अधम संकल्प। ये तीन संकल्प होते हैं। उत्तम संकल्प होता है वो सात्विक संकल्प कहलाता है, मध्यम होता है वो राजसी संकल्प कहलाता है, अधम संकल्प होता है वो तामसी कहलाता है। अब उत्तम संकल्प करने से वो देवता वगैरह बनता है, और राजस संकल्प करने से वो मनुष्य आदि योनि में भटकता है, और तामस संकल्प करने से वो कीड़ा है, पशु है, पक्षी है, इनमें वो घूमता रहता है। जब तक ये संकल्पों का सुख लेता रहता है तब तक उसके लिए मोक्ष का साम्राज्य जो है वो दूर रहता है, और ज्यों ही वह इन संकल्पों का त्याग करता है इसी का नाम मुक्ति है। तुमने पूछा ना कि शरीर के साथ संबंध कैसे होता है, ये संकल्प के साथ संबंध होने से अपने आप ये संबंध हो जाता है। देखो टंकी में पानी होगा ना तो 50 मीटर दूर भी पाइप लगा हुआ उसमें पानी आ जाएगा, तो टंकी में पानी होगा तो वह आएगा, टंकी में पानी नहीं होगा तो नहीं आएगा। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध तो बहुत बाद की चीज है, पहले ये संकल्प करता है शरीर आदि के साथ, तब ये जाओ जाओ यहां का करके और फंस जाता है। अब इस संकल्प का त्याग करने के लिए तुम चाहे लाखों वर्षों तक तपस्या करो, कोई कुछ काम होने वाला नहीं है। यदि वर्ष सहस्राणी तपश्चरसी दारुणम, भयंकर तपस्या हजारों वर्ष तक करो, चाहे तुम पताल में चले जाओ, चाहे तुम स्वर्ग में चले जाओ, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, अपने बनाए हुए संकल्प का त्याग तो अपने को ही करना पड़ेगा। और वो संकल्प आदमी चाहे जहां कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है संकल्प त्याग के अलावा। इसलिए मनुष्य को शुभ संकल्प बनाने चाहिए। तो देखो एक लाइन खींच दी किसी ने, अकबर ने एक दिन एक लाइन खींची और कहा कि इसको बिना छुए इसको बड़ा बनाओ, इसको छोटा बनाओ, बड़ा नहीं छोटा, ये लाइन हमने खींच दी इसको कोई जो है छोटा बनाओ, और इसको छूना नहीं, किसी ने नहीं किया, महाराज बिना छुए कैसे छोटी होगी। वीरबल को बुलाया, वीरबल ने उसके लिए बड़ी लाइन खींच दी, क्या महाराज अब देखो बड़ी छोटी कौन सी, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है। तो अकबर कहने लगा ये है बुद्धिमानी। ऐसे ही यदि हमारे संकल्प हैं तो संकल्पों को कैसे दूर करें, तो हमारा संकल्प जैसे शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, ये संकल्प बना, इसकी जगह मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस संकल्प से ही संकल्प टूट जाएगा। संकल्प तंतु निखिला भावा प्रोता किला नग है, इसलिए ऐसा संकल्प जो है बना करके और अशुभ संकल्पों का त्याग कर दोगे तो ये जीवो ब्रह्मत्व आपनुयात, ये जीव ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म का रूप हो जाएगा। इसीलिए तो शास्त्र बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, पर मैं ब्रह्म हूं की जगह पर संतों ने अनुभव के द्वारा बताया कि देखो शास्त्रों में जो मैं ब्रह्म हूं ये ठीक लिखा है, पर मैं भगवान का हूं ये बहुत अच्छा है, सुगम है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने में कोई गलत तो नहीं है, परंतु मैं भगवान का हूं ऐसा मानने में अहंकार नहीं आता, हमारी जिम्मेवारी भगवान पर चली जाती है। अधिगत परमार्थताम उपेत्य प्रसभम अपास्य विकल्प जालमुच्चैहि अधिगमय पदम तदद्वितीयम वितत सुखाय सुसुप्त चित्त वृत्ति। इस संसार के अंदर जागृत में सुसुप्ति रखो, जागृत में सुसुप्ति, जैसे सुसुप्ति अवस्था में हमारा किसी के साथ संबंध नहीं रहता, गहरी नींद, सुसुप्ति माने गहरी नींद, गहरी नींद में कहे भाई मैं ऐसा यहां सोया कि माना कहीं ठा नहीं पड़े हो, बहुत आराम से सोया, बात चित्त की भावना है, वह भावना रखनी चाहिए शरीर में आदि से काम करते समय में, तब जो है संकल्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ बहुत प्रसन्न हो गया और कुछ ने जैसा बताया वैसे आत्म रूप में वो स्थित हो गया। फिर वाल्मीकि जी ने उन दोनों पुत्रों से कहा कि देखो बेटा अब जाओ, राम यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ऋषि मुनि आए हैं, अब तुम अयोध्या के गली गली में और सब जगह जाओ, राम कथा सुनाओ, जो हमने राम कथा तुमको बताई है समझाई है, शंकर जी ने जो सुनाई है उसको तुम गाओ। देखो जब तुम राम कथा गाओगे तो तुमको लोग बहुत कुछ देंगे, तो तुम किसी से किसी प्रकार की कोई वस्तु मत लेना। न ग्राह्यम वही युवाभ्याम तद यदि किंचित प्रदास्यति, कोई तुमको अयोध्या में कुछ चीज देवे ना कि ये ले हो ये ले हो ये ले हो, तुम लेना नहीं। ठीक है, ऐसा कह दिया। अब वहां पर जो है वो दोनों बच्चे खूब गाने लगे, अपूर्व पाठ जाति इनसे, वो ऐसे लटका कर करके अयोध्या की गलियों में गाने लगे तो सब लोग इकट्ठे हो गए। एक बार भगवान राम को भी पता चला कि कुछ बच्चे यहां पर गाने के लिए आए हैं, तो भगवान राम ने सब ऋषियों को बुलाया और उन दोनों बच्चों को भी बुलाया। वहां पर बड़े बड़े पुराण वेत्ता पुरुष थे, ब्राह्मण लोग भी थे, बड़े बूढ़े थे, कई नैगम पुरुष, नैगम माने निगम शास्त्र के अनुसार चलने वाले, सबको बुलाया और उन दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों तुमने जो कुछ लोगों को सुनाया वो हमको भी सुनाओ। तब वो वहां पर गाने लगे दोनों, कुश और लव गाने लगे। गाते गाते वो लोग सोचते हैं कि देखो इन बच्चों का ये ललाट है एकदम राम जी जैसा मिलता है, ये आंखें की भुएं हैं और आंखों के ऊपर ये पलके हैं और चेहरा है, नाक है, कपोल है, कान है, एकदम राम से मिलते जुलते हैं। इमौ रामस्य सदृशौ बिंबात बिंब मिवोदितौ, ऐसा लगता है कि राम जी का कोई प्रतिबिंब भी इनके ऊपर पड़ा हुआ हो। देखो ये होठों की जो घुमावदार बात है ये भी राम जी से मिलती है। यदि दोनों बच्चे ऐसे जटा वगैरह धारण न करें, ऋषि मुनियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण न करें और इनको राजकुमार जैसे कपड़े पहना देवे तो कोई कह नहीं सकता है कि राम के लड़के नहीं है, ऋषि के लड़के हैं। क्या बात है, देखो ये बिल्कुल राम के लड़के हैं। तो दूसरे ऋषि मुनि बोलते हैं कि हाँ देखो, राम जी की कथा कहते 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 बच्चों के अंदर राम की भावना बनी, राम की भावना बनने से राम जैसे हो गए। कि भाई हो सकते हैं, राम की कथा में तो बड़ी विशेषता है। एवं संवदता, हम ऐसे आपस में भी बात कर रहे थे। बात करते करते जो है उन्होंने अपना पूरा गीत सुना दिया। तब राम जी ने भरत से कहा कि भरत, इन बच्चों ने देखो कितना अच्छा अपने को सुनाया है, पूरी रामायण सुनाई है, तो इनको जो है तुम 1000 सोने की मुद्रा दो। तो वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। तो वो दोनों बच्चे स्वीकार नहीं कि ना, हमारे गुरुजी ने हमको मना किया है कि मने ने सुवर्ण न, ये सोने की मुद्रा लेके हम क्या करेंगे, हम तो जंगल का कंदमूल फल खाते हैं, हमें सोने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम नहीं लेंगे। जब इस प्रकार से ये बात कही तो सब ऋषि मुनि आश्चर्य में डूब गए। और राम स्वस्यैव विस्मित है, राम अपने चरित्र को सुनकर और इन बच्चों का ये त्याग देख करके बहुत आश्चर्य में डूब गए। अब जो है धीरे 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 कानाफूसी हुई, ये किसके लड़के हैं, किसके लड़के हैं, किसके लड़के हो सकते हैं। आज शत्रुघ्न जी आए हुए थे। शत्रुघ्न जी ने कहा, महाराज इतना क्यों विचार करते हो, मैं खुद वहां गया था, ये आप ही के पुत्र हैं, सीता के पुत्र हैं। सीता के पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं। तो शत्रुघ्न, तुम जाओ वाल्मीकि जी के पास, हनुमान तुम भी जाओ, सुषेण तुम भी जाओ, विभीषण और अंगद तुम दोनों भी जाओ, और जाकर के वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। वाल्मीकि जी से कहो कि आप सीता और दोनों पुत्रों सहित इस यज्ञ के संसद में आप पधारिए, और आकर के आप सीता के विषय में लोगों को प्रत्यय दिलाइए। प्रत्यय माने विश्वास, विश्वास दिलाइए कि सीता की परम शुद्धि हो चुकी है, सीता गत कल्मषा है, सीता में कोई अपराध नहीं है, ये आप सब लोगों के बीच में बताइए। तब जो है वे सब वाल्मीकि जी के पास गए, वाल्मीकि जी से निवेदन किया कि भगवान राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने भगवान की बात समझ करके कई देर तक विचार किया, विचार करके कहा कि देखो, आप लोग राम जी के पास जाओ और राम से कहो कि हम कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल सीता आपको शपथ दिला देगी, सब लोगों को वहां पर जो है बैठा देना। ये निश्चित बात है कि योषिताम परमम दैवम पतिरेव न संशय है, स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता है नहीं, कोई भगवान है नहीं, सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ा भगवान स्त्री के लिए पति होता है। इसलिए सीता जी को अपने पति के वहां जाने में कोई संकोच नहीं होगा, कल आएंगे। सब लोगों ने जाकर राम जी से निवेदन किया। इधर राम जी ने भी सबको सूचना दिला दी कि भाई जो भी आप यज्ञ वाले आए हुए हैं, सब यहाँ यहाँ बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, सीता जी शपथ दिलाने, शपथ देने के लिए आपके पास आएगी। अब सीता जी का कहाँ कसूर है, कि सीता बेकसूर है, इसका आप लोग निर्णय कर लीजिएगा। सब लोग आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये महर्षि बानर सब लोग वहां आ गए। अब सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सीता जी कब आए, सीता जी कब आए। थोड़ी देर में सबसे पहले वाल्मीकि जी महाराज के दर्शन हुए, आगे आगे वाल्मीकि जी हैं। इतना बड़ा विशाल जन समुदाय, छोटे बड़े सब वहां पर उपस्थित, ऋषि मुनियों का समुदाय, पतिदेव विराजमान, अयोध्या वासी विराजमान, मंत्री वगैरह सब वहां पर विराजमान। कृतांजलि वाष्प कंठा, देखो बा आपरी कथा कह रहे, आप अपनी कथा कह रहे, वीरगन भाई कथा है, वह अच्छी लगे वीर, आपा अपने करा। तो वो आने लगे वाल्मीकि जी महाराज, तो आगे आगे आए और बड़े प्रेम से कि आओ सीते, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सीता जी तो झर झर हुई, सब नीचा मुख किए हुए, बड़ी लाज है। देखो माताओं के पास में सबसे बड़ी विशेषता है उनकी लाज, उनकी शर्म। ये स्त्री नाम भूषणम लज्जा, कुलवती स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लाज है। महाराज श्री कहा करते थे, एक बच्ची का कोई गीता जी को पाठ उसको पूरा याद था, जब खड़ी और बोल, वो खड़ी हुई बोलने लगी ना तो रोने लग गई हो। फिर उसको पूछा कि रोया क्यों, तो वो बोलेगी मन इतना लोग हमें लाज आई, महाराज जी बहुत खुश हुए। ये कुलीनता की पहचान है। प्राय करके माताएं मैंने जो है लाजवती होती है, तो बड़ी लाज है, कुलीनता की पहचान। तो किंचित अवांग मुखी और पानी आने लग गया आंखों से लाज के कारण से, फिर भी सीता जी वैसे ही आई जैसे ब्रह्मा जी के पीछे पीछे लक्ष्मी जी आती हैं। वाल्मीकि पृष्ठतः सीताम, सब लोगों ने सीता जी के दर्शन किए। जो ही सीता जी के दर्शन हुए सबने साधुवाद साधुवाद, धन्य हो धन्य हो, सीता जी का दर्शन किया। वाल्मीकि जी महाराज थोड़े आगे बढ़कर ठीक लोगों के बीच में खड़े होकर राम जी से कहने लगे, हे राम, यम दासरथे सीता सुब्रता धर्मचारिणी, ये सीता बड़ी धर्म का आचरण करने वाली है, सर्वथा निष्पाप है, ये मेरे आश्रम के समीप रही है, आपने लोकापवाद के भय से इसका त्याग किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीता परम शुद्ध है। ये दोनों पुत्र सीता के हैं और ये दोनों पुत्र हर दृष्टि से बड़े विलक्षण हैं। मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूं, अतएव मैं प्राचेतस कहलाता हूं। मैंने अपने साधना पूर्ण जीवन में कभी झूठा नहीं कहा है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। मैंने आज तक जो तपस्या की है उस तपस्या के बल पर पूर्ण सत्यता से ये मैं बात बोलता हूं कि सीता परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, परम शुद्ध है। और यदि सीता के मेरे इन वचनों में कोई त्रुटि आए तो इतने वर्षों की तपस्या का मुझे लेश मात्र भी फल न मिले। सब लोगों की आंखें भरी आई, लोगों ने देखा कि सीता पर हमने ये लांछन लगाया, बड़ा भारी लांछन लगाया, अच्छा नहीं किया। देखो एक जगह बड़ी विचित्र बात आती है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सीय निंदक अग ओग नसाए, सीय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोख बनाई बसाए। जब भगवान की वंदना करते करते अयोध्या की वंदना करते हैं तुलसीदास जी महाराज, तो कहते हैं कि मैं अयोध्या की वंदना इसलिए नहीं करता हूं कि यहां राम जी का जन्म हुआ, इसलिए वंदना नहीं कर रहा हूं। तो सीय निंदक अग ओग नसाए, सीता जी की निंदा करने के पाप से अयोध्यावासी वास्तव में समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। सीता जी की निंदा की आप लोगों ने, राम जी को वनवास दिया तो उस समय सारी अयोध्या राम जी के पीछे गई, और सीता जी को जब लक्ष्मण जी वनवास में छोड़ के आए तो आप में से कोई गया ही नहीं, आपको आपने राम जी को कुछ कहा ही नहीं। सीय निंदक अग ओग नसाए, परंतु लोक विशोक बनाई बसाए। राम जी की आप पर कितनी कृपा है अयोध्या वासियों कि लोक विशोक बनाई बसाए, आपके लिए शोक रहित लोकों का निर्माण किया और उसमें आपको बसाया, ये राम जी की कितनी कृपा है। तो आप पर राम जी की कृपा है इसलिए अयोध्या वासियों आपको मैं प्रणाम करता हूं, नहीं तो आप तो सीता जी के आलोचना करने से नष्ट हो गए थे, फिर भी राम जी की आप पर कृपा रही। तो वो बोलते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब ऐसा कहा तो राम जी महाराज कहने लगे कि आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है, मैंने तो लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए लोकापवाद के भय से सीता का त्याग किया था। यद्यपि हमने सीता जी की परीक्षा लंका के अंदर अग्नि के साक्षी में कर ली थी, सब देवता उपस्थित थे, परंतु फिर भी यहां अयोध्या में तरह तरह की चर्चा होने लगी, तो मैं सर्वथा निष्पाप सीता का मैंने त्याग किया। ये नहीं कहा कि मुझे आगे कुछ लीला करनी थी, यही कहा कि मैंने यदि आपको कोई गलत लगा हो तो आप मुझे क्षमा करें, मुझे सब पता है, इन बातों से कोई मैं बात। ये देखो आजकल लोग राम जी की इस लीला पर, सीता जी की अग्नि परीक्षा पर बहुत छींटाकसी करते हैं। अरे कोई भी भगवान लीला करते हैं तो लीला के पीछे भाव देखना चाहिए, भगवान की तो लीला के पीछे भाव देखें ही, यहां व्यवहार में भी भाव देखना चाहिए। हो एक आदमी हमारे पेट में छुरा लगाता है तो वो उसका क्या भाव है? डॉक्टर भी छुरा लगाता है और एक अपराधी चोर है वो भी छुरा लगाता है, तो डॉक्टर छुरा लगाता है तो डॉक्टर को तो इनाम देते हैं, उसने हमारा पेट फाड़ दिया, डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया और अंदर ऑपरेशन किया, गाज भरे सब ठीक कर दिया और हमको बीमारी से मुक्त कर दिया, तो ठीक रहा। और एक जो है वो जो है चोर है, उसने भी हमारे थोड़ा सा ही घाव किया यहां, लेकिन उसको दंड मिलेगा, क्योंकि उसका भाव खराब था। बाहर की क्रिया तो डॉक्टर की ज्यादा घातक थी, इतना चक्कू हमारे अंदर डाल दिया और इतना लंबा करके हमारा ऑपरेशन कर दिया, बताओ, और उसने तो केवल इतना ही लगाया है, लेकिन भाव क्या है? डॉक्टर का भाव है बीमारी से दूर करके आपको सुखी करने का, और चोर का भाव है आपको मारने का, तकलीफ देने का। ऐसे भगवान का भाव क्या है? सीता जी का यदि त्याग भी किया है तो भगवान सीता जी की महिमा बढ़ाने के लिए त्याग किए हैं। दूसरा, सीता जी का त्याग करके और सीता जी, फिर सीता जी के प्रति भगवान की कैसी निष्प्रियता है ये बताने के लिए, सीता जी की दिव्यता बताने के लिए, और सीता जी को अब बैकुंठ में भेजना है उस दृष्टि से, तो कैसे जाएं यहां से, यहां से सीता जी कैसे जाएं? कहते हैं कि साहब वो तो राम जी जैसे गए वैसे ही चले जाएं, ऐसे नहीं, राम जी जाए वैसे नहीं जाए, क्योंकि ऐसे सीता जी आई नहीं है। सीता जी आई कहां से? जिस समय जनक जी हल जोत रहे थे तो मंजूषा के अंदर से, पृथ्वी में से आई ना सीता, तो पृथ्वी के अंदर से आई, तो पृथ्वी के अंदर जाकर के ही जो है सीता जी बैकुंठ में जाएंगी। भगवान क्षीर सागर से गए थे तो भगवान सरयू से चले गए, तो भगवान का यहां आने का तरीका और था, सीता जी का आने का रास्ता और था, अतएव सीता जी भूमि मार्ग से जाएंगी, क्योंकि भूमि मार्ग से आई थी। फिर भी भगवान बोलते हैं कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। सिद्ध शुद्धायाम जगती मध्य सीतायाम प्रीति रस्तु में, सीता के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। सब लोग वहां पर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय सीता जी ने जो है पहले ऊपर दृष्टि की, फिर नीचे दृष्टि की, सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके सबके बीच में सुनाया कि रामादन्यम, यदि मैंने राम के अलावा अपने मन से भी किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं किया है तो हे पृथ्वी देवी, आप हमको अवकाश दो, आप हमको यहाँ खड्डा दो, हम उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसा जब उस सीता जी ने शपथ पूर्वक वचन कहे, उसी समय में एक आवाज हुई और पृथ्वी फटी और उस पृथ्वी के अंदर से एक सिंहासन प्रकट हुआ। वो सिंहासन था, वो अनेक अनेक फणों के ऊपर लिए हुए बड़े बड़े नागराज थे, उसको यूं लिए हुए थे। वे नागराज भी बड़े दिव्य देह वाले थे और उस सिंहासन के ऊपर स्वयं साक्षात पृथ्वी देवी बैठी हुई थी। और जो ही सिंहासन बाहर आया, पृथ्वी वहां आई और सीता जी को अपने छाती से लगाई और कहा, बेटा अब तुम चलो, तुम्हारा समय यहां पूरा हो गया। इस प्रकार से सीता जी को अपने सिंहासन पर बैठाया, सिंहासन वापिस नीचे चला गया और पृथ्वी वापिस ऐसे बराबर हो गई। उसी समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की। अब ये बंदर थे ना, ये जितने बंदर आए थे सब बंदर वहां रोने लगे। राम जी को देखते हैं, कभी उस जमीन को देखते हैं, कभी राम जी को देखते हैं। राम जी की आंख से आंख जब उन बंदरों से मिली तो राम जी के भी आंखों में जल आ गया। राम जी भी उस जगह को देख रहे जहां सीता जी लीन हुई। केचित रामम निरीक्षन्त है, केचित सीताम अचेतस है। मुहूर्त मात्रम तत्सर्व, एक मिनट में ही, एक मुहूर्त में ही सब कुछ हो गया। सब ऐसे हो गए जैसे कोई चेतना शून्य हो, सारा जगत मोहित हो गया। भगवान ने बड़ा वहां पर शोक करने की लीला की और बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सब सीता जी के इस प्रकार से चले जाने के बाद राम जी को ज्ञान देने लगे। और राम जी ने भी इस प्रकार से ऐसा सुंदर अभिनय किया कि जैसे लोगों के ऊपर असर पड़ा कि सीता का त्याग कोई एक विशेष लीला ही थी। वो यज्ञ पूरा हो गया और लव कुश को लेकर राम जी महाराज अपने महल में आ गए और वहां पर वे सदा से ही आत्मचिंतन में लगे रहे। कौशल्या माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन कौशल्या माँ ने राम को बुलाकर कहा, बेटा राम, तुमने हमारे से जन्म तो लिया है, मैं तुम्हारी माँ तो कहलाती हूँ, लेकिन अभी जो मुझे परम आनंद मिलना चाहिए था वो आनंद नहीं मिलता है। मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मेरे अंदर जलन पूरी मिटी नहीं है। अब तो मेरा समय मृत्यु का हो गया है। न अद्यापि अबोध जय कृष्ण भव बंधो निवर्तते, अज्ञान का जो बंधन है वो मेरा निवृत्त नहीं हुआ। इसका कोई उपाय बताओ, मुझे ज्ञान दो ताकि संसार में मेरा आवागमन मिट जाए। मातृवत्सल भगवान राम ने जर्जरित हुई, जरा जर्जरिताम, बुढ़ापे से ही एकदम जर्जरित हुई अपनी माँ कौशल्या जी को बड़े प्रेम से कहने लगी, सुनो माँ, मेरे मोक्ष की प्राप्ति के तीन उपाय बताए जाते हैं। कर्मयोग बताया जाता है, भक्ति योग बताया जाता है और ज्ञान योग बताया जाता है। उसमें माँ मैं आपको भक्ति के विषय में सुनाना चाहता हूँ। भक्ति जो होती है, जिसका जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार से भक्ति होती है। जो भक्त हिंसा आदि करते हैं और भेद दृष्टि रखते हैं वो तामस भक्त होते हैं। जो कोई न कोई कामना रखते हैं, धन की कामना है, यश की कामना है, और भी कोई लौकिक कामना रखते हैं और मेरे में भेद बुद्धि रखते हैं कि वो भगवान तो अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसे भेद बुद्धि रखते हैं वो राजस भक्त होता है। और जो अपने कर्मों को मेरे लिए अर्पित करता है और भेद बुद्धि फिर भी रखता है वो वास्तव में सात्विक भक्त होता है। लेकिन मेरे गुणों को सुनने के बाद जिसका चित्त अखंड भाव से मेरे अंदर गंगा के प्रवाह के समान समुद्र में जैसे गंगा का प्रवाह जाता है अविच्छिन्न हुआ, ऐसे बिना किसी रुकावट के जिसके सब चित्त वृत्तियां मेरे में लीन होती हैं, वो मेरा निर्गुण भक्त होता है, सबसे ऊंचा भक्त होता है। और वो सालो किसारि सामी पिसायुज इनको वो बिल्कुल नहीं चाहता है, वो तो केवल मेरे से प्रेम ही प्रेम करता है। उसकी प्रेम भावना कभी कम होती नहीं है। जैसे संसारी आदमी देह गेह आदि से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम उनका छूटता थोड़ा ही है। ऐसे मेरे में प्रेम करने वालों का जब भी प्रेम छूटता नहीं, वे निर्गुण भक्त होते हैं, सबसे ऊंचे भक्त होते हैं। ये मेरा सबसे उत्कृष्ट उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है प्रेम करने का। तो उसके लिए आचरण क्या करें कि कामनाहीन होकर अपने धर्म का पालन करें और मेरे दर्शन करें, मेरी स्तुति गाए, मेरे कथाओं को सुने, मेरी बातों को सुने, सत्संग करे, उसके द्वारा उनके मन में भक्ति पैदा होती है। समान अवस्था वाले समान आयु वाले पुरुषों के साथ मित्रता रखे और वेदांत वाक्य का निरंतर स्मरण करता रहे और नामानुकीर्तनात् मेरे नाम का स्मरण करता रहे, सत्संग करता रहे और अर्जने भी आर्जवे नहीं हुए माने बहुत सरलता से सत्संग करे, सरल भाव से। सत्संग में भी जाते हैं तो एक कुसंग होता है, महाराज जी कहा करते थे कि सत्संग में भी एक कुसंग होता है। क्या सत्संग में जब ये बात चले कि भाई बहू को ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तब सासू जी को थी हाँ आज आइए लाइन में, आज बोलिया है सत्संग में ये रहना चाहिए या नहीं। अथवा कभी कहे कि भाई सासू जी को बहुत प्यार से बर्ताव करना चाहिए, सासू यदि अपने बेटे में और अपनी बेटी में और बहू में अलग बर्ताव करती है तो वो बहुत जो है चोट पहुंचती है सदव्यवहार के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बहू से ज्यादा प्रेम करो बेटी से कम प्रेम करो। बहू को ये लगे कि नहीं जो है मेरी माँ मेरी सासू माँ बेटी से इतना प्रेम नहीं करती जितना मेरे से करती है, तब जो है ये प्रेम बना रहता है। तो ऐसी बात गए तो बहू देखते कि हाँ आपके सासू जी लाइन में आया है, कि ऐसी बात नहीं, ये सत्संग में कुसंग होता है। साधुओं की बात चले कि साधु को ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो गृहस्थी देखते हैं कि देखो ये साधुओं के लायक बात कही तो ये देखो ऐसे साधु नहीं है वैसे नहीं, और गृहस्थियों के लिए कहे तो साधु कहे कि अरे गृहस्थियों की भाव ही खराब है, देखो आजकल गृहस्थी कैसे हो गए, ये कुसंग है। सत्संग में जावे तो अपने लायक जो बात है उसको गहराई से सुनकर अपना सुधार करना चाहिए, यह है सत्संग के अंदर सरलता। और अहम परिवर्जनात् अहंकार का त्याग करना चाहिए, मेरे गुणों को सुनते ही मन के अंदर स्वाभाविक ही मेरे अंदर खिंचाव होना चाहिए। जैसे वायु है वो वायु किसी गंध वाली वस्तु पर गई और उसी समय में उसकी गंध जो है आती है लोगों के नाक में आती है, इसी प्रकार योगाभ्यास के द्वारा अपने चित्त को अपने आत्मा तक पहुंचाना चाहिए। योगाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास कौन सा भाई, ये भगवान की भक्ति करने का योग, नाम है कथा श्रवण है सत्संग श्रवण है स्वभाव का सुधार है। सर्वेषु प्राणी जातेषु अहम आत्मा व्यवस्थित है, सबके अंदर मेरी भावना से देखो सबको, ऐसा नहीं कि ये आदमी तो पापी है ये दुष्ट आत्मा है, ये ठीक है पाप करता है लेकिन इसमें भगवान नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पापी को कैसे भगवान समझे, कि पापी को थोड़ी भगवान समझना है, इस पापी में भगवान है, पापी में भगवान है। कैसे, जैसे कूड़े के अंदर 5-10 करोड़ का हीरा पड़ा है, बोलो साहब कूड़े में 5-10 करोड़ का हीरा जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, झाड़ू बुहारी की पता नहीं चला और वो डाल दिया चला गया। तो कूड़े में 5-10 करोड़ का जैसे हीरा दिखता है तो वो कूड़ा कूड़ा नहीं दिखता है आदमी को, वो उस कूड़े कचरे वाली ढेरी पर चला जाएगा और अपने आदमी को ले जाके भाई सावधानी से देखना इसमें हमारा हीरा है, वो 10 करोड़ का हीरा है, और वो बिल्कुल कूड़ा कचरा उधर देखने का ही मन नहीं करता, मार दुर्गंध आती है पर उसमें हीरा है, हीरा 10 करोड़ का हीरा पड़ा है, तो भाई उसके अंदर कूड़े के अंदर बुराई नहीं दिखती, उसकी दृष्टि 10 करोड़ के हीरे पर रहती है। ऐसे ही पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट हिंसक से हिंसक व्यक्ति के अंदर भी हमारी बुद्धि भगवान की रहनी चाहिए कि इसमें भगवान है। क्रियोत्पन्नैर नैक भेदैर द्रव्यैर्मेन आम्बतोषणम्। ऊपर से चाहे आप कितनी क्रियाएं कर लो माता जी, ऊपर से चाहे हमारे मंदिरों में जाकर आप लाखों करोड़ों रुपए भेंट कर दो, उससे मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं होती है। भूतावमानिनाचार्यम अर्चितो हम न पूजित है, किसी भी प्राणी का अपमान करते हो तो मैं उससे पूजित नहीं होता हूँ, प्रतिमा में पूजित होने से थोड़े कोई पूजित होता हूँ। सब प्राणियों में मेरा स्वरूप देखो, आत्मा तो देखो सब में है ही ना, वो आत्मा मेरा ही तो स्वरूप है। उस आत्मा पर विचार नहीं करते और उसकी क्रिया पर विचार करते हो, उसके आचरणों को देखते हो, उसमें आत्मा रहती, उस आत्मा को देखना चाहिए ना। आत्मा पर दृष्टि न रखने के कारण से लोगों को मेरी बुद्धि समझ में नहीं आती कि भाई ये भगवान है कि नहीं। चेतसैव अनिशम सर्वभूतानि प्रणमेत, संपूर्ण प्राणियों को मेरा स्वरूप समझ करके इनको प्रणाम करते रहना चाहिए। ईश्वर में और जीव में कभी भेद नहीं देखना चाहिए। माताजी आपकी अवस्था के लायक, आपकी योग्यता के लायक, आपके लायक मैंने आपको जो कहना था वो मैंने कह दिया, पर माताजी आपने मुझे पुत्र रूप से बहुत स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आप कोई चिंता मत करो, आपका तो अंत में बहुत ऊंचे ऊंची जगह पर ही आपका निवास होगा, बड़ी शांति मिलेगी, आपको कोई किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए। कौशल्या बड़ी आनंदित हुई। कौशल्या जी राम जी का हृदय में ध्यान किया और फिर वे परम गति को प्राप्त हो गए। कैकेयी ने देखा कि ओ कौशल्या जी को भी उपदेश दिया, मुझे भी दे, तो कैकेयी चापि योगम रघुपति गदितम पूर्वमेवाधिगम्य श्रद्धा भक्ति प्रशांता हृदि रघुतिलकम भावयंती गतासु। कैकेयी जी ने भी राम जी महाराज से सारा उपदेश सुनायु, जो उपदेश पहले था वो सब उपदेश सुना, उपदेश को हृदय में धारण किया और उसी उपदेश को सुनते हुए भगवान की भक्ति करते करते कैकेयी भी परम धाम को पधार गई। और ऐसे ही माता श्री लक्ष्मणस्या प्यति विमलमति, निर्मल बुद्धि वाली सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की जो माँ है वह भी राम जी से उपदेश लेकर परम गति को प्राप्त हो गई, सब चले गए।